पंचाध्यायी लेक्चर नंबर 12
ओम नमः सिद्धेश्वर ओम नमः सिद्धेश्वर ओम नमः सिद्धेश्वर ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सौवसाहूणं तत्त्वं सल्लाक्षणिकं सन्मात्रं वायतः स्वतः सिद्धं तस्मादनादिनिधनम् निर्विकल्पं च।
यह ग्रंथ राशि पंचाध्यायी है और अभी हम पृष्ठ संख्या 27 पर आ गए हैं। तीसरा अवांतर अधिकार हमारा शुरू हुआ है। पहले हमने द्रव्य का अभेद दृष्टि से निरूपण देखा, फिर भेद दृष्टि से भी निरूपण देखा। अब ये जो गुणत्व निरूपण की बात यहाँ चलेगी, यानी गुण पर्यायवत द्रव्य हमने देख लिया है। गुण को ही दूसरी पद्धति से द्रव्य रूप से समझाया था और पर्याय को उत्पाद वे रूप से। फिर भी जो गुण है उसका स्वरूप ठीक ख्याल में आने के लिए, ये गुण क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी बात यहाँ चलेगी गुणत्व के निरूपण में। 103 में पूछा गया था कि गुणपना क्या पदार्थ है। फिर उसका उत्तर में बताया था कि ये गुण कैसे तो द्रव्य के आश्रय से रहने वाले हैं और वे स्वयं विशेष से रहित है, गुण विशेष है और वे विशेषों से रहित है, इस तरह से, यानी उनमें गुण नहीं है, गुणों के आधार से गुण नहीं है। अभी पर्याय को विशेष कहते वो बात अलग। तो ये हो गई थी 104 नंबर की श्लोक की बात। पेज 27 चल रहा है अपना। 105 में ये बताया था कि सूत्र के आधार से ये हमने कल पढ़ा था ना, अर्थ देख लेते। देखो, गुण द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। उसका खुलासा ऐसा है कि एक गुण के जो प्रदेश है वे ही प्रदेश सभी गुणों के है। जितना क्षेत्र, क्योंकि गुण कहाँ रहता है, तो द्रव्य के पूरे भाग में। कौन सा गुण द्रव्य के पूरे भाग में? हर। तो सभी, यानी हर एक गुण का प्रदेश उतने ही है। सभी प्रदेशों में प्रत्येक गुण पाया जाता है, यानी वो सभी गुणों के समान, यानी वे ही प्रदेश है। समान कहने से अन्य अन्य समान ऐसा भी नहीं है, और वे इकट्ठे रहते हैं गुण। अभी हम 106 नंबर को पढ़ने जा रहे हैं। दृष्टांत शुक्लाद्या यथा ही समतंतवः समं संति बुद्ध्या विभज्यमाना क्रमतः श्रेणी कृता गुणाधेया। दृष्टांत, जैसे समान तंतु वाले सभी शुक्लादि गुण इकट्ठे रहते हैं। यानी वस्त्र में क्या है, तो शुक्लादि गुण है। तो कोई एक पर्टिकुलर वस्त्र कहने से उसके तंतु थे वही के वही तंतु है, और उन्हीं तंतुओं में सभी गुण पाए जाते। शुक्ल गुण है, दूसरा जो कोई उसे सॉफ्ट है, जो कुछ है, सभी गुण उतने ही तंतुओं में पाए जाते। तो कहते जैसे समान तंतु वाले सभी शुक्लादिक गुण इकट्ठे रहते हैं, उन शुक्लादि गुणों का बुद्धि से विभाग किया जाए तो, यानी ये शुक्ल गुण है, फिर दूसरा कोई जो है तो हल्का ये गुण है, इस तरह से हम उसके बुद्धि द्वारा एक एक गुण अलग निकालेंगे तो कितने होते हैं, क्रम से श्रेणीवार अनंत गुण प्रतीत होते हैं। अनंत गुण ही प्रतीत होंगे। अभी हमने 106 नंबर का श्लोक पढ़ा, उसका अर्थ भी देखा।
क्रम से श्रेणीवार इनर रो,
क्रम से ने 1 2 3 4 ऐसे हम गिनेंगे तो अनंत हो जाते हैं। ये कल तो हमने देखा था कि अनंत गुण होते हैं। और उसी के लिए उदाहरण के द्वारा वही बात फिर दोबारा समझाए। अब 107 नंबर को पढ़ेंगे।
नित्यानित्य विचार स्तेषामिह विद्यते ततः प्रायः विप्रतिपत्तौ सत्याम् विवदन्ते वादिनो यतो बहवः।
गुणों के विषय में बहुत से वादियों का विवाद होता है, अन्य अन्य मत वाले उसके लिए अपना अपना मत प्रस्तुत करते हैं। कोई गुणों को सर्वथा नित्य बतलाते हैं और कोई सर्वथा अनित्य बतलाते हैं। इसलिए आवश्यक प्रतीत होता है कि गुणों के विषय में नित्यता और अनित्यता का विचार किया जाए, जैसे हमने द्रव्य के विषय में किया। यहाँ भी अपेक्षा वसम नित्य अनित्य की बात यहाँ देखेंगे। इसके लिए 108 नंबर पढ़ेंगे। अभी यहाँ ये जो पहला शब्द है ना जैना नाम, वहां तक रुकना, वहां एक स्पेस चाहिए। मतम एतत् नित्य, यानी वो आगे का एक अलग शब्द रखना। जैना नाम के बाद एक स्पेस देना, वहां एक लाइन रखना। मतमेतन नित्यानित्यात्मकम, मतम एतत् नित्य अनित्यात्मक, यानी जैनियों के, जैना नाम यानी जैनियों का ऐसा मत है। कैसा है? नित्य और अनित्य। पढ़ेंगे पहले हम श्लोक।
जैनानां मतमेतन् नित्यानित्यात्मकं यथा द्रव्यं गेयास्तथा गुणा अपि नित्यानित्यात्मकास्तदेकत्वात्।
देखो आसान सरल है। देखो ऊपर के श्लोक में क्या होता है, यथा यानी जैसे। जैनियों के मत में क्या है, द्रव्य नित्य अनित्यात्मक होता है। तथा नीचे के लाइन में गुणा अपि, गुण भी नित्यानित्यात्मकाः, उसका कारण बताया। तद एकत्वात्, द्रव्य और गुणों का एकत्व होने से, जैसे द्रव्य नित्यानित्यात्मक है वैसे गुण भी नित्यानित्यात्मक है, इसे ज्ञेया है यानी जानिए। देखो अभी हम अर्थ पढ़ेंगे। यहाँ से जैनियों का तो ऐसा सिद्धांत है कि जिस प्रकार द्रव्य कथनचित नित्य और कथनचित अनित्य है। कथनचित यानी अपेक्षा उसमें गर्भित है, किसी अपेक्षा से नित्य है और किसी अपेक्षा से अनित्य है, यानी थोड़ा नित्य थोड़ा अनित्य ऐसा नहीं लिखा। उसी प्रकार गुण भी कथनचित नित्य कथनचित अनित्य है, क्योंकि वे द्रव्य से एक रूप है, क्योंकि गुणों का समुदाय ही तो द्रव्य है। द्रव्य से सर्वथा भिन्न गुण नहीं है, तो गुणों के समूह को ही द्रव्य कह दिया हमने। और द्रव्य नित्यानित्यात्मक है तो गुण भी नित्यानित्यात्मक ही है, ये बात तो सिद्ध हो जाती है। 109 नंबर।
तत्रोदाहरणमिदं तद्भावाव्ययात् गुणानित्या तदभिज्ञानात् सिद्धं तल्लक्षणमिह यथा तदेवेदम्।
नित्य का यह लक्षण है कि जिसके स्व भाव का नाश न हो, अपने भाव का नाश न हो, यह लक्षण गुणों में पाया जाता है, यानी गुण कायम अपने स्वरूप से रहते हैं, इसलिए गुण नित्य है। गुणों के स्वभाव का नाश नहीं होता है, यह गुणों का लक्षण, यह वही है, ऐसे एकत्व प्रत्यभिज्ञान द्वारा सिद्ध होता है। तत् अभिज्ञानात्, अभिज्ञानात् यानी वो प्रत्यभिज्ञान, प्रत्यभिज्ञान देखा ना हमने, यह वही है ऐसा जो जोड़ रूप ज्ञान है, उसके लिए भी एकत्व प्रत्यभिज्ञान लिख दिया। प्रत्यभिज्ञान भी अलग प्रकार से हो सकता है, जैसे हमने सामने आपने ये क्लिप लाई तो हमने कहा हमारे पास भी ऐसी ही थी, तो ऐसी ही थी ये तो उसके साथ एकत्व हुआ। हम कहते वो हमारी कुछ अलग थी इसका नाम अलग है, तो ये प्रत्यभिज्ञान तो जरूर हुआ। तो वो उसके साथ जो कोई भिन्नता थी वो हमारे ख्याल में आ गई। तो इसलिए प्रत्यभिज्ञान के भी उस अपेक्षा से भेद करते हैं। यहाँ एकत्व प्रत्यभिज्ञान के यह वही है, गुण हर समय यह वही है, वही है, जैसे ज्ञान गुण, तो ज्ञान गुण वही 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 कब से, तो अनादि से अनंत काल तक। तो यह वही है ऐसे एकत्व प्रत्यभिज्ञान द्वारा सिद्ध होता है, अर्थात गुणों में यह वही गुण है ऐसी प्रतीति होती है, और यही प्रतीति उनमें नित्यता को सिद्ध करती है। ये वही है, वही है, वही है, ये क्या है, वो नित्यता है। जैसे हमने किसी बच्चे को वो 10 साल की उम्र में देखा और फिर वो 20 साल का हुआ तब हमने दोबारा देखा, तो वो वही लड़का है ये तो हमने पहचान लिया, परंतु उस अरे कितना बदल गया, अरे बदल गया पर तो पहचाना ना कि वही है करके, तो कुछ तो वहाँ नित्य भी रहा है। तो यहाँ गुणों में पर्यायों की बात, पर्याय जो यानी गुणों का जो प्रकट अवस्था है उसमें हीनाधिकता तरतमता होने पर भी गुण वही है, वही है, वही है, ये जो प्रत्यभिज्ञान के कारण बुद्ध जो है, इसलिए कहते गुण नित्य है, यानी इससे नित्यता सिद्ध होती है। इसके लिए प्रमाण क्या बताया, तद भावाव्ययम नित्यम इति मोक्ष शास्त्र, तद भाव अव्ययम यानी वही भाव, वही का वही। अब 110 नंबर को पढ़ेंगे, ज्ञानम परिणामी यथा घटस्य चाकारतः पटाकृत्या किं ज्ञानत्वं नष्टम् न नष्टमथ चेत् कथम न नित्यं स्यात्। उदाहरणार्थ जो ज्ञान पहले घट के आकार रूप से परिणमन कर रहा था, घट को जानना उसको कहेंगे घट के आकार रूप से परिणमित हो रहा है, घट का आकार नहीं, घट का जैसा वो तो शेप हुआ है, ज्ञान का शेप नहीं बदलेगा, ज्ञान में उसको जाना जाएगा। तो ज्ञान में गेय की विशेषताएं झलकना कहो या उसको जान लेना, उसको कहेंगे वो गेयाकार हुआ। ज्ञान तो अपने आकार से स्थित है, पर ज्ञान में गेय झलकता है तो वो गेयाकार हुआ ऐसा कहेंगे। ज्ञान ने घट को जाना तो कहेंगे, यानी उसका ऐसा भी कहे घट के आकार रूप से परिणमित हुआ, ये कहने की पद्धति है। तो जो ज्ञान पहले घट के आकार रूप से परिणमन कर रहा था, यानी घट को जान रहा था अपनी भाषा में, वह यद्यपि पट के आकार रूप से बदल जाता है, वो घट को जानते जानते फिर हमने पट को यानी वस्त्र को जानना शुरू किया, तो पहले जो ज्ञान घट को जान रहा था उसको कहेंगे वो घट के आकार हो रहा, अब पट को जानते समय वो पट के आकार हो रहा। तो क्या यहाँ ज्ञानत्व नष्ट हो जाता है, परंतु वहां भी जानने का कार्य चल रहा था, यहाँ पर भी जानने का ही तो कार्य हो रहा है। यदि कहा जाए ऐसा होने पर भी ज्ञानत्व नष्ट नहीं होता है, यदि ऐसा है तो फिर वह नित्य क्यों न सिद्ध होगा, अवश्य नित्य सिद्ध होगा। यानी ज्ञान 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 तो चल ही रहा है, जैसे पहले घट का ज्ञान था, फिर पट का ज्ञान हुआ, फिर हमने कुछ शास्त्र का ज्ञान किया, वो उसका ज्ञान यानी क्या, उसको जाना, ज्ञान उसका नहीं हो गया। हम कहते हैं हमें गणित का ज्ञान है, भूगोल का ज्ञान है, भूगोल का थोड़ा ही ज्ञान है, ज्ञान हमारा है, हमने भूगोल को जाना है तो भूगोल का ज्ञान कहने में आता, एक कथन पद्धति होती है। भावार्थ, आत्मा का ज्ञान गुण परिणमनशील है, और कौन से गुण परिणमनशील है, सभी सभी। कभी वह घट के आकार होता है तो कभी पट के आकार हो जाता है, घटाकार से पटाकार होते समय उसमें क्या ज्ञान गुण नष्ट हो जाता है, तो कहते नहीं, ज्ञान गुण नष्ट नहीं होता, केवल अवस्था भेद हो जाता है, यानी ज्ञान के कायम रहते हुए अवस्था पलट गई, पहले घट को जान रहा था अभी पट को जान रहा है। सब में लगा ना, ये स्पर्श गुण का जो कोई परिणमन हो रहा था तो कहीं उष्ण रूप से परिणमित हो रहा था, तभी उसकी अवस्था पलट गई और वो कम उष्ण हुआ या शीत रूप से परिणमित हुआ, तो स्पर्श गुण तो कायम रह गया। इतना ही भेद हुआ है, जानना दोनों अवस्थाओं में बराबर है, इसलिए ज्ञान का कभी नाश नहीं होता। जैसे पानी ठंडा था फिर वो हमने गर्म किया तो क्या हुआ, स्पर्श गुणिष्ठ हो गया, अवस्था पलट गई। यहाँ तो ज्ञान गुण पर घटित है, हम हर एक गुण पर यह बात घटित कर सकते हैं। जब ज्ञान का कभी नाश नहीं होता यह बात सुप्रतीत है, यानी हमारे अच्छी तरह से प्रतीति में आ सकती है, तो वह नित्य क्यों नहीं है, अवश्य नित्य। 111
दृष्टान्तः किल वर्णो गुणो यथा परिणमन रसाल फले हरितापीतस्तत्किं वर्णवं नष्टमिति नित्यम्।
अब यह आम का उदाहरण दिया, रसाल फल ने आम रहा। तो दृष्टांत, जिस प्रकार आम के फल में रूप गुण बदलता रहता है, दृष्टांत है ना, किल वर्णो गुणो यथा परिणमन, यानी वर्ण गुण का परिणमन होता है। आम की कच्ची अवस्था में हरा रंग रहता है, पकने पर उसमें पीला रंग हो जाता है। क्या हरे से पीला होने पर उसका रूप यानी रंग वर्ण, ऊपर लिखा ना रूप गुण यानी वर्ण गुण की बात चल रही है, वर्ण के बदले उन्होंने रूप लिखा है, वहां पर बात देखी है, वर्ण लिखा है, यानी वर्ण गुण बदलता रहता है, तो क्या हरे से पीला होने पर उसका रूप यानी वर्ण नष्ट हो जाता है? यदि नहीं नष्ट होता है तो क्यों नहीं रूप गुण यानी वर्ण गुण को नित्य माना जावे, अवश्य मानना चाहिए। हर एक में लगा ले, पहले वो कठिन थे वो तो नरम हो गए, वो अवस्था बदल गई, फिर भी स्पर्श गुण तो वही का वही। भावार्थ, हरे रंग से पीला रंग होने में केवल रंग की अवस्था में भेद हो जाता है, रंग दोनों ही अवस्थाओं में है, इसलिए रंग सदा रहता है, वह चाहे कभी हरा हो जाए, पीला हो जाए, कभी लाल हो जाए, यानी रंग सभी अवस्थाओं में है, यानी वर्ण गुण की बात चल रही है, इसलिए रंग यानी रूप गुण नित्य है। यह दृष्टांत अजीव का है, यानी पुद्गल का है, पहला जीव का दृष्टांत दिया, ज्ञान गुण पर घटित किया। अब 112 नंबर को देखेंगे।
वस्तु यथा परिणामी तथैव परिणामिनो गुणाश्चापि तस्मादुत्पाद व्ययम् द्वयमपि भवति गुणानां तु।
जिस प्रकार वस्तु प्रतिक्षण परिणमनशील है, ऊपर लिखा ना यथा परिणामी, परिणामी यानी वो तो परिणमन होता रहता है उसमें, उसी प्रकार गुण भी प्रतिक्षण परिणमनशील है, यानी हर समय उसका परिणमन होता रहता है, अवस्था पलटती है। इसलिए जैसे वस्तु का उत्पाद और व्यय होता है, उसी प्रकार गुणों का उत्पाद और व्यय होता है। पहले तो हमने वस्तु अखंड वस्तु में उत्पाद व्यय घटित कर लिया, अब यहाँ एक एक गुण में हम बता रहे हैं। एक 113 नंबर।
ज्ञानम गुणो यथा स्यात् नित्यं सामान्यवत्तयापि यतः नष्टोत्पन्नं च तथा घटं विहायाथ पटं परिच्छिन्दन्।
परिच्छित्य ने परिच्छिन्दन ने जानता है, वो जानना हो जाता है ना। तो क्या कहा, यद्यपि सामान्य दृष्टि से ज्ञान नित्य है, ज्ञानम गुणो यथा स्यात् नित्यम सामान्यवत, सामान्य से, तथापि वह कभी घट को और कभी पट को जानता है, इसलिए अनित्य भी है। यतः नष्टर उत्पन्नम च तथा घटम विहाय अथ पटम परिच्छिन्दन। विहाय ने छोड़कर, घट को छोड़कर पट को जानते समय वो तो अनिष्ट नहीं, नष्ट नहीं होता है, तो घट को जानना छोड़कर पट को जानता है तो ये अनित्य है, ये बात सिद्ध होती है। ज्ञान गुण सामान्य से तो नित्य है, परंतु अन्य अन्य ज्ञेय को जानता रहता है तो वो अनित्य भी है। भी लगाया, नित्य भी है और अनित्य भी है। देखो भावार्थ लिखा है, अवस्था की अपेक्षा यानी पर्याय की अपेक्षा से ज्ञान अनित्य है, अपनी सत्ता की अपेक्षा से नित्य है। अपनी यानी वो एक एक गुण की बात यहाँ अलग से भेद करके बता रहे हैं, इसलिए गुणों पर यह घटित करना है। 114 नंबर,
संदृष्टि रूप गुणों नित्यश्चाम्रे पिवर्ण मात्रतया नष्टोत्पन्नो हरिता परिणम मानश्च पीतवत्वेन।
अभी संदृष्टि बनाई, संदृष्टि रूप गुण यानी उसका भी दृष्टांत दे रहे हैं कि जो रूप गुण, अभी यहाँ रूप गुण कह दिया, ऊपर वहाँ वर्ण लिखा था, यहाँ रूप गुण लिख दिया। आम में रूप सदा रहता है, इसकी अपेक्षा से यद्यपि रूप गुण नित्य है तो भी, यहाँ लिखा ना रूप गुणो नित्य आमरे, आमरे ने आम में वर्ण मात्र यानी वर्ण मात्र की अपेक्षा नित्य है तो भी हरित से पीत अवस्था में बदलने से वह नष्ट और उत्पन्न भी होता है। कौन? वो गुण, जैसे हमने द्रव्य में घटित किया था, पर्याय की अपेक्षा से द्रव्य ही यानी पूरी वस्तु ही उत्पाद रूप होती है और वस्तु ही दृष्ट होती है, तो इस अपेक्षा से पर्याय की अपेक्षा से पर्याय को देखो ही मत और द्रव्य ही नष्ट होता है उत्पन्न होता है कहेंगे तो बात गलत है। यहाँ पर भी अवस्था में बदलने से वह नष्ट और उत्पन्न होता है, यानी अवस्था की दृष्टि से वो गुण भी नष्ट होता है और उत्पन्न होता है। नोट, यहाँ तक गुणों का नित्यात्मक स्वरूप कहकर अब इसी को शंका समाधान द्वारा पीसते हैं, यानी उसके और अधिक चर्चा करेंगे। 115 में अभी शंकाकार शंका पूछता है,
ननु नित्या हि गुणापि भवन्त्व नित्यास्तु पर्यया सर्वे तत्किं द्रव्यवदिह किल नित्या नित्यात्मका गुणा प्रोक्ता।
शंका है, यह बात निश्चित है कि गुण नित्य होते हैं और पर्याय सभी अनित्य होती है, फिर क्या कारण है कि द्रव्य के समान गुणों को भी नित्या नित्यात्मक बतलाया है। एक बात ख्याल में है ना, वो क्या कहना, यहाँ गुण को ही नित्य और अनित्य बतला रहे, अनित्य पर्याय की दृष्टि से गुण को ही अनित्य बता रहे। अभी कहते गुण तो नित्य है और पर्याय तो अनित्य है, उसने वो तो सर्वथा भेद करके बता रहा है और गुण द्रव्य को हमने नित्यानित्यात्मक सिद्ध किया है, तो कहते गुण तो नित्य ही है और पर्याय अनित्य है, तो आप ये द्रव्य के समान क्यों कह रहे हो, ये उनका प्रश्न है। अब समाधान करते 116 में,
सत्यम तत्र यतः स्यात् इदमेव विवक्षितं यथा द्रव्ये न गुणेभ्यः पृथगिह तत् सदिति द्रव्यं च पर्ययाश्चेति।
पर्यया किया है वो, पर्यया चाहिए पर्ययाश्चेति। देखो उपर्युक्त शंका यद्यपि ठीक है, ये टोडरमल जी ऐसी भाषा ऊपर थे ना, तो कहता है वो सत्य है परंतु यहाँ भी थे ऊपर ही सत्यम, तो उपर्युक्त शंका यद्यपि ठीक है तथापि उसका उत्तर इस प्रकार है कि गुणों से सत अर्थात द्रव्य और पर्याय कोई भिन्न पदार्थ नहीं है, क्योंकि गुणों का समुदाय ही तो द्रव्य है और गुणों का परिणमन ही पर्याय है। क्या कहते हैं, द्रव्य गुण पर्याय भिन्न भिन्न चीजें तो है ही नहीं, गुणों के समुदाय को द्रव्य कहेंगे, गुणों के परिणमन को पर्याय कहेंगे। इसलिए जिस प्रकार द्रव्य में विवक्षावश यानी किस अपेक्षा से कहते हैं कथन करना, विवक्षा ने अपेक्षा सहित कथन करना, कथनचित नित्यता और कथनचित अनित्यता आती है, उसी प्रकार गुणों में भी नित्यता अनित्यता विवक्षाधीन है। विवक्षाधीन है अपेक्षा से कथन करने पर उसके अनुसार वो उसका कथन होगा। वह इस प्रकार है, वो फिर दोबारा बता रहे कैसा है। 117 में अपि नित्याप्ति समयम् विनापि यत्नम् हि परिणमन्ति गुणा सच परिणामोऽवस्था तेषामेव न पृथक् सत्तागः। यद्यपि गुण नित्य है तथापि बिना किसी प्रयत्न के प्रति समय परिणमन करते हैं। ये बात बहुत अच्छी है, नहीं तो हर समय हमको प्रयत्न करते रहना चाहिए पर्याय के लिए। यहाँ क्या लिखा देखो, यद्यपि गुण नित्य है तथापि बिना किसी प्रयत्न के प्रति समय परिणमन करते हैं। जानना 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 कितना कष्ट उठा रहे हैं। अरे हर समय गुण स्वयं ही परिणमन यानी जानने रूप कार्य कर रहा है, अवस्था में बदल रहा है। हर समय जानना 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 तो कहते बिना किसी प्रयत्न के वह परिणाम भी उन्हीं गुणों की अवस्था विशेष है, भिन्न सत्ता वाला नहीं। ज्ञान गुण है तो जो जानने रूप में भी जानने रूपी परिणमन तो हो रहा है, भले हीन जाने अधिक जाने किस तरह से जाने, परंतु जानन रूप तो जैसा गुण में जो शक्ति है वही तो प्रकट हुई है, उसी की वो अवस्था है, कोई भिन्न पदार्थ तो है ही नहीं है। फिर शंका देखो सेकंड लाइन में पहला शब्द है उभयोरंतर्वर्ती चाहिए, वर्वी हुआ है ना वर्ती, यानी ती और उसके ऊपर रफा, समझ में ही बात। 118 ननु तदवस्थो ही गुण किल तदवस्थांतरम ही परिणाम उभयोरंतर्वर्ते त्वादिह पृथगे तदेव इदमिति चेत्। पृथक एतत् एवं इतम इति चेत्, वो उसके जो अलग अलग ना उसका पूरा एक शब्द बना देते हैं, संधि कहते हैं उसको। शंकाकार का कहना है कि गुण तो सदा एक सा रहता है और परिणाम एक समय से दूसरे समय में सर्वथा जुदा है, तथा परिणाम और गुण इन दोनों के बीच में रहने वाला द्रव्य भिन्न ही पदार्थ है। यदि ऐसा कहे तो यानी गुण भिन्न है पर्याय भिन्न है और द्रव्य भिन्न है, यदि ऐसा कहे तो क्या बात है, उसका समाधान कह रहे हैं। यहाँ पर भी देखो तन्न यतः सदवस्था सर्वा आगे लिखा ना आम्रेडितम चाहिए, वहाँ क्या हुआ है आभ्रे आभ्रे नहीं आम्रे चाहिए, आम्रेडितम यथावस्तु पढ़ेंगे अभी श्लोक को। तन्न यतः सदवस्था सर्वाम्रेडितम यथावस्तु न तथा ताभ्यः पृथगिति किमपि सत्ता कमंतरम वस्तु। तन्न यानी उपर्युक्त शंका ठीक नहीं है, अब उसके लिए कारण बताएंगे। यत यानी क्योंकि परिणाम गुणों की ही अवस्था विशेष है और वह गुण और उनके परिणाम अर्थात सत की सब अवस्थाएं मिलकर ही वस्तु कहलाते हैं। क्या कहा, ये जो परिणाम जो हम पर्याय कह रहे हैं वो गुणों की विशेष अवस्थाएं हैं। तदवस्था सर्वा, और ये जो वस्तु है गुण और उनके परिणाम से सत की सब अवस्थाओं मिलकर ही तो वस्तु कहलाते हैं। उन गुण पर्यायों से भिन्न सत्ता वाली वस्तु कोई जुदा पदार्थ नहीं है, यानी वो भिन्न कोई सत्ता ही नहीं है द्रव्य की। गुणों का समुदाय और गुणों की जो अवस्थाएं है वही तो द्रव्य है। भावार्थ, शंकाकार ने गुणों को उनके परिणामों से भिन्न बतलाया था और उसमें हेतु दिया था एक समय में जो परिणाम है दूसरे समय में उससे सर्वथा भिन्न ही है। इसी प्रकार वह भी नष्ट हो जाता है, तीसरे समय में जुदा परिणाम ही पैदा होता है। इसलिए गुणों से परिणाम सर्वथा भिन्न है, ये शंकाकार ने पूछा था, ये शंकाकार का कहना था। इसका उत्तर दिया गया है, यद्यपि परिणाम प्रति समय भिन्न है, तथापि जिस समय में जो परिणाम है वह गुणों से भिन्न नहीं है। एक परिणाम से दूसरा परिणाम भिन्न भले हो, क्या कहा, यद्यपि परिणाम प्रति समय भिन्न है, किससे भिन्न है, पूर्व परिणाम से दूसरा है परिणाम है वो भिन्न है। आप कहेंगे केवल ज्ञान तो अनंत काल तक चलता है ना, और उसमें भी अविभाग प्रतिच्छेदों की तरतमता होती रहती है। तो यहाँ तो कहते हैं कि परिणाम वो भिन्न भिन्न है, परंतु जिस समय में जो परिणाम है वह गुणों से भिन्न नहीं। जानने रूप हम परिणाम की बात करेंगे, जानना जानना जाने परिणाम है, ये पर्याय है। तभी वो घट को जान रहा था, कभी पट को जान रहा था, परंतु जान तो रहा था ना, यानी गुण क्या है तो जानने रूप, ये जो ज्ञान गुण है उसका कार्य क्या है तो जानने का कार्य, तो ये कार्य तो चल ही रहा है। गुण तो ज्ञान, ज्ञान गुण, ज्ञान गुण, ज्ञान गुण तो कायम है, और ज्ञान गुण का ही अंश तो पर्याय में प्रकट होता है, जानने रूप कार्य होता है उसका। इसलिए कहते हैं जिस समय जो परिणाम है वो गुणों से भिन्न नहीं है। जैसे हमने स्पर्श गुण की बात किया या वर्ण गुण की बात देखी थी आम्रपल में, तो पहले भी हरित वर्ण था यानी हरा रंग था, वो पीला हो गया, परंतु वर्ण तो वर्ण गुण कायम रह गया वहां पर, वो वर्ण गुण ही की अवस्थाएं। तो कहते जिस समय में जो परिणाम है वो गुणों से भिन्न है, भिन्न नहीं है, उन्हीं की अवस्था विशेष है। देखो इससे ये जानने का एक फल हमें ऐसा भी है कि हमें तो अवस्था ही दिखाई देती है, गुण कहाँ दिखाई देता है। ये गुण है हम अवस्थाओं के द्वारा ही तो नक्की करते हैं। हमें कोई ना कोई वर्ण दिख रहा है, या पीला हो, लाल हो, सफेद हो, जो कोई है, तो सफेद वर्ण, लाल वर्ण, ये जो हम कहते हैं वर्ण, यानी वर्ण की अवस्थाएं हम जानते हैं। हर एक गुण की अवस्थाएं हमें दिखा, क्योंकि जो कोई गुण है वो किसी ना किसी अवस्था रूप से तो पाया जाएगा, और अवस्था देखकर ही हम उस गुण की नक्की करते हैं। ये हमारा जानने रूप कार्य हर समय चल रहा है, तो जानना हो रहा है ये हमको किसी को पूछना नहीं पड़ता, वो हमारा प्रकट लक्षण है। तो जानना चल रहा है वो ज्ञान गुण को बताता है, और ज्ञान गुण जहां एक है वहां अनंत गुण है ही है, क्योंकि जिस प्रदेश में एक गुण है तो गुणों का समुदाय तो द्रव्य है। तो जानने की पर्याय से हमने ज्ञान गुण को सिद्ध किया, और ज्ञान गुण के द्वारा हमने जीव द्रव्य को नक्की किया, और यहाँ हम जान रहे तो यह हमारा है, यानी हम स्वयं आत्मा है कि नहीं, ऐसे जो लोगों को प्रश्न उठता है ना, तो एक पर्याय के द्वारा हम पूरा द्रव्य को पकड़ सकते हैं। हमें वो भेद पर नहीं नजर करना, उसके द्वारा हम अभेद को पकड़ सकते हैं। तो यहाँ लिखा ना, गुणों से परिणाम सर्वथा भिन्न, ऐसा वो शंकाकार कह रहा था। तो उसको उत्तर में बताया था कि प्रति समय का परिणाम यद्यपि भिन्न भिन्न जुदा जुदा है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था जुदी है, परंतु जिस समय जो परिणाम है वो गुणों से भिन्न नहीं है, उन्हीं की अवस्था विशेष है, यानी गुणों के ही अन्य अन्य अवस्थाओं को हम पर्याय कहे। इसी प्रकार प्रति समय का परिणाम गुणों से अभिन्न है, यदि गुणों से सर्वथा भिन्न ही परिणाम को माना जाए तो प्रश्न हो सकता है वह परिणाम किसका है। बिना परिणाम के परिणाम होना असंभव है, यानी परिणाम यानी पर्याय है वो किसको सिद्ध करती, तो परिणाम ही क्यों सिद्ध करती। गुणों की बात करेंगे तो जिस गुण में जो शक्ति है वही तो पर्याय में प्रकट हो रही है। तो कहते बिना परिणामी के परिणाम होना असंभव है, इसलिए गुणों का परिणाम गुणों से सर्वथा भिन्न नहीं है, परिणामों से भिन्न कोई गुण नहीं है, और गुणों से भिन्न कोई द्रव्य नहीं। देखो ये द्रव्य गुण और पर्याय तीनों अभिन्न ये बात सिद्ध कर रहे हैं, यानी परिणामों से भिन्न कोई गुण नहीं है और गुणों से भिन्न कोई द्रव्य नहीं, अतः सब गुण पर्याय मिलकर ही वस्तु है, ये सिद्ध हुआ ना लास्ट में जाके। हमें इसकी विस्तार से क्यों जान रहे हैं हम, तो वस्तु कैसी है उसका अच्छी तरह से हमें ज्ञान हो जावे, इसलिए हमें गुणों का भी स्वरूप देख रहे हैं, पर्यायों का भी स्वरूप देख रहे हैं। परंतु गुण और पर्यायों के भेद करके समझने पर भी, पर्याय को एक जगह रखो, गुण को एक जगह रखो, फिर वो उसमें पर्याय है कि नहीं है, ये जो प्रश्न उठ रहे है ना, तो हमने उसको सर्वथा भिन्न भिन्न मानकर चर्चा करते हैं या सोचते हैं, तो ऐसे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। 120 नंबर। नियतम परिणामित्वात् उत्पाद व्ययमया एव गुणा टंकोत्कीर्ण न्यायात् ते एव नित्या यथा स्वरूपत्वात्। जिस प्रकार परिणमनशील होने से गुण उत्पाद व्यय स्वरूप है। अब पहले तो हमने गुण को द्रव्य कहा था ना, अब यहाँ गुण को परिणमनशील कह दिया। जैसे द्रव्य को उत्पाद व्यय और द्रव्यात्मक कह दिया था, ऐसे गुणों को भी कह रहे हैं, तो गुण को परिणमनशील बताया, यानी उसमें परिणमन है, और वो परिणमन की अपेक्षा गुणों को देखेंगे तो उत्पाद व्यय स्वरूप है। उसी प्रकार टंकोत्कीर्ण न्याय से अपने स्वरूप में सदा स्थिर रहते, इसलिए वे नित्य भी है, यानी गुण उत्पाद व्यय रूप भी है क्योंकि उसमें परिणमनशीलता, और वो नित्य भी है टंकोत्कीर्ण न्याय से क्योंकि यह वही है, ये बात हम सिद्ध कर सकते हैं। 121। नहि पुनरेकेषामिह भवति गुणानां निरन्वयो नाश अपरेषामुत्पादो द्रव्यं यत्तद्वयाधारम्। ऐसा नहीं है कि नहीं पुनः कि किन्हीं गुणों का तो सर्वथा नाश होता जाता है और दूसरे नवीन गुणों की उत्पत्ति होती जाती है, ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे पास वो कोई वृक्ष देखते हैं, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए आते हैं, तो कहते ऐसा नहीं है कि किन्हीं गुणों का तो नाश होता जाता है और दूसरे नवीन गुणों की उत्पत्ति होती है, तथा उस उत्पन्न और नष्ट होने वाले गुणों का आधार द्रव्य है, इन्हें ऐसा नहीं है कहते। गुण कायम रहकर ही परिणमन की अपेक्षा उत्पाद व्यय बताए। यहाँ ऊपर लिखा ना गुण उत्पाद स्वरूप है और टंकोत्कीर्ण न्याय से नित्य भी है, यानी इसमें ऐसा नहीं कि किसी गुण का नया उत्पाद होता है, किसी का नाश होता है, कोई कायम रहता, ऐसा नहीं है, यानी प्रत्येक गुण परिणमन की अपेक्षा उत्पाद व्यय रूप है और टंकोत्कीर्ण ने ऐसे ये वही का वही हो तो नित्य भी। 122। दृष्टान्ताभासोऽयम् स्याद्धि विपक्षस्य मृत्तिकायां हि एकेन श्यन्ति गुणा जायन्ते पाकजा गुणास्तन्ने। गुणाः तु अन्ये। अभी उसके लिए दृष्टान्ताभास बता रहे हैं, यानी किसी का उत्पाद होता है, किसी का व्यय होता है, किसी गुण का, और किसी गुण को तो कायम रहते गुण, ऐसा जो कोई कहता है ऐसा नहीं है, पहले कह रहे शंकाकार ने पूछने से पहले। अब ऐसा कोई पूछता तो वो कोई दृष्टांत भी दे देता, तो ये दृष्टांत भास क्या है उसके लिए, तो कहते जो गुणों का नाश और उत्पाद मानते हैं, हमने कहा किसी का नाश, किसी का उत्पाद और अन्य किसी कायम, ऐसा मानने वाले हैं, उनका उक्त कथन की पुष्टि में यह कहना है कि मिट्टी में पहले गुण तो नष्ट हो जाते हैं और पाक से होने वाले दूसरे गुण पैदा हो जाते हैं, यह केवल दृष्टांताभास है, यानी वो सही दृष्टांत नहीं है, यानी पहले घड़ा कच्चा था, फिर वो भट्टी में पकाया उसको कहते पाक, तो उसमें कुछ अन्य गुण थे वो नष्ट हुए और यहाँ कुछ अन्य गुण उत्पन्न हुए, ये खोटा दृष्टांत है, दृष्टांताभास है, उसी को भावार्थ में समझा रहे हैं। नैयायिक दर्शन का सिद्धांत है कि जिस समय कच्चा घड़ा अग्नि में दिया जाता है, वो भट्टी को आवा कहते हैं, अग्नि में दिया जाता है ना, वो पकाते हैं उसमें भट्टी में डालकर, उस समय उस घड़े के पहले सभी गुण नष्ट हो जाते हैं। घड़े का पाक होने से उसमें दूसरे ही नवीन गुण पैदा हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वैशेषिकों का ये नैयायिक नाम का एक मत है, वैशेषिक नाम का दूसरा एक मत है। वैशेषियों का तो यहाँ तक भी सिद्धांत है कि अग्नि में जब घड़े की पाकावस्था होती है तब काला पड़ जाता है, तो तब काला घड़ा बिल्कुल फूट जाता है, उसके सब परमाणु अलग अलग बिखर जाते हैं, फिर शीघ्र ही रक्त रूप पैदा होता है, रक्ते ने लाल, पहले कच्चा घड़ा तो काला दिख रहा था ना, मिट्टी का गीला, तो काले वो परमाणु बिखर बिखर गए और फिर वो लाल परमाणु हो गए। और पाकज परमाणु इकट्ठे होते हैं, यानी कैसी कल्पना है उनकी, पहले तो बिखर गए पूरे और फिर लाल हुए और फिर वो पके हुए इकट्ठे हो गए, पाकज यानी पाक से जन्मे हुए, नए उत्पन्न हुए सके, उनसे कपाल बनते हैं, उन कपालों से लाल घड़ा बनता है। इस कार्य में यानी वहां घड़ा फूटा भी और नया बना भी ना, तो घड़े के फूटने और बनने में जो समय लगता है वो अति सूक्ष्म है, इसलिए जाना नहीं जाता। इस नैयायिक सिद्धांत के दृष्टांत को देकर गुणों का नाश और उत्पत्ति मानना सर्वथा मिथ्या है, सर्वथा कह दिया, यह दृष्टांत सर्वथा बाधित है यानी खोटा है, यह बात किसी विवेकशाली की बुद्धि में नहीं आ सकती कि अग्नि में घड़े के गुणों का नाश हो जाता है अथवा वह घड़ा ही अग्नि में फूटकर फिर झटपट अपने आप तैयार हो जाता हो। इसलिए उक्त नैयायिकों का सिद्धांत सर्वथा बाधित है। इस दृष्टांत से गुणों का नाश और उत्पत्ति यानी गुणों की उत्पत्ति मानना मिथ्या है। इसी बात को ग्रंथकार स्वयं प्रकट करते हैं। 123 नंबर, तत्रोत्तरमिति सम्यक् सत्यां तत्र च यथा विधायाम हि किं पृथ्वी त्वं नष्टं न नष्टमथ चेत् तथा कथं न स्यात्। अर्थ इसका समीचीन उत्तर यह है कि वहां पर इस प्रकार की विधि होने पर अर्थात घड़े का कच्चे से पक्के रूप परिणमन होने पर यानी मिट्टी के पकते समय क्या मिट्टी पने का नाश हो जाता है? यदि मिट्टी पने का नाश नहीं होता तो उस समय वह पृथ्वीत्व गुण वाली क्यों न मानी जाए? मिट्टी को पृथ्वीत्व गुण कह दिया उसमें, इसलिए गुण नित्यात्मक कैसे नहीं है यानी अवश्य प्रश्न ऐसा पूछा है कि उसका उत्तर क्या है? नित्यात्मक है। भावार्थ, गुणों का परिणमन अर्थात अनित्यपना तो वादी ने स्वयं स्वीकार कर ही लिया था। नित्यपना ने मिट्टी पने से आचार्य महाराज ने सिद्ध कर दिया। इस प्रकार जैन सिद्धांतानुसार गुणों को नित्यात्मक, वो एक शब्द चाहिए, बीच में डैश नहीं चाहिए, नहीं तो डैश डालेंगे तो नित्य एक शब्द होगा और नित्य दूसरा शब्द, ये नित्य और अनित्य मिलकर वो शब्द हुआ है। तो गुणों को नित्यात्मक सिद्ध कर दिया, यानी गुण नित्य और अनित्य है ये सिद्ध हुआ, परिणमनशील है ना, तो उनकी अपेक्षा से देखें तो गुणों को ही हम उत्पाद वय रूप कहेंगे, अनित्य कहेंगे गुणों को, परिणमन को ख्याल में लेकर हम गुणों को देखें। और शंकाकार क्या कह रहे थे, गुण तो सर्वथा नित्य है और वो पर्याय वो अनित्य है, यानी सर्वथा भिन्न भिन्न वस्तुएं मानकर चल रहा है। और फिर शंका दो श्लोकों में मिलकर पूछ रहे हैं, ननु केवलम प्रदेशा द्रव्यम देशाश्रया विशेषास्तु गुण संज्ञका ही तस्मात्
भवति गुणेभ्यश्च द्रव्यमन्यत्र।
शंका, जो प्रदेश है वे ही द्रव्य कहलाते हैं। देश के आश्रय से रहने वाले जो विशेष है वे ही गुण कहलाते हैं, इसलिए गुणों से द्रव्य भिन्न है। अब ये भी हाँ, यानी द्रव्य किसको, वो प्रदेशों का जो हमने देखा ना इसकी चौड़ाई, उसको उन्होंने द्रव्य कह दिया। और ये उसके आश्रय से रहते हैं, वो उनकी भिन्नता मान ली उसने, गुणों से द्रव्य भिन्न है ऐसे मान रहा है। अब इसीलिए वो शंका चालू है उसकी। यहाँ जो पहली लाइन है, ततैव यथा सुगटम भंगोत्पाद ध्रुवत्रयम्, ध्रुव और वह इकट्ठा चाहिए, पूरा शब्द ध्रुवत्रयम् द्रव्य, वो अलग अलग छपा है ना, पढ़ेंगे पहले। ततैव यथा सुगटम भंगोत्पाद ध्रुवत्रयम् द्रव्य न तथा गुणेषु तत्स्यात् अपि च तद्व्यस्तेषु वा समस्तेषु। जब गुणों से द्रव्य भिन्न है तब उत्पाद व द्रव्य ये तीनों द्रव्य में जिस प्रकार सुगठित होते हैं उस प्रकार गुणों में नहीं होते, न तो किसी किसी गुण में होते हैं और न गुण समुदाय में ही होते हैं, ये उसका प्रश्न है। पहले 124 में क्या पूछा था कि प्रदेश है वो द्रव्य है और उसके आश्रय से रहने वाले जो विशेष है वो गुण है, इसलिए वो भिन्न भिन्न है, ये उसके पहली मान्यता। अब कहते अभी जो भिन्न मान लिया है तो उत्पाद वे द्रव्य, ये जो द्रव्य में सुगठित हो रहे हैं तो गुणों में नहीं हो गए, वो तो भिन्न भिन्न है। भावार्थ, अभी शंकाकार को ही वो अच्छी तरह से फिर स्पष्ट कर रहे। शंकाकार का यह अभिप्राय है द्रव्य रूप देश नित्य है, यानी उनके प्रदेश, उसकी अपेक्षा से ही द्रव्य है, ही लगाया, यानी प्रदेशों की अपेक्षा से, जो विस्तार की अपेक्षा से ही मात्र ध्रुव बता दिया। और गुण रूप विशेष अनित्य है और गुणों को वो अनित्य मान रहा है, वो प्रदेशों को नित्य मान रहा है और गुणों को अनित्य मान रहा है, उनकी अपेक्षा से ही उत्पाद व्यय है। यानी वहां कोई पर्याय की बात अलग से बताई नहीं, वो तो कायम रहने वाले गुणों को मान ही नहीं रहा। अभी उसका समाधान 126 में, तन्नयतः क्षणिकत्वा पत्तेरिह लक्षणा गुणानां हि तदभिज्ञान विरोधात् क्षणिकत्वं बाध्यते द्यक्षात्। उपर्युक्त शंका ठीक नहीं है। तन्न यतः, क्योंकि इस लक्षण से गुणों में क्षणिकता आती है, गुणों का ही उत्पाद व्यय में मानने से गुण तो सर्वथा अनित्य हो जाएंगे, क्षणिक हो जाएंगे। गुणों में क्षणिकता यह वही है, इस प्रत्यभिज्ञान से प्रत्यक्ष बाधित है। हमें तो यह वधित है, वही है, ये तो प्रत्यक्ष में अनुभव में आ रही बात, तो उससे बाधित हो जाती है ना। यानी गुणों में क्षणिकता मानना यह बात रॉन्ग सिद्ध होती है, गलत सिद्ध होती है। वो कहीं से बाधा आती है उसमें, तो यह वही है ऐसे प्रत्यभिज्ञान तो हमें हो रहा है, तो उसके द्वारा प्रत्यक्ष से बाधित हो रही बात, इसलिए वो सिद्ध नहीं। भावार्थ, प्रत्यभिज्ञान से गुणों में नित्यता की ही प्रतीति होती है। कश्चिदेव तत्र गुणः तन्नाशादन्यतर स्यादिति युगपन्न संत्यनेक गुणः। गुणों को उत्पाद व्यय रूप मानने से द्रव्य में एक समय में कोई एक गुण ठहरेगा, उस गुण के नाश होने से दूसरा गुण उसमें आवेगा, एक साथ द्रव्य में अनेक गुण नहीं रह सकेंगे, क्योंकि उसको उत्पाद वे रूप मान रहे ना। जैसे पर्याय एक जाती है और दूसरे आती है, वैसे गुण को भी मानना पड़ेगा। 128 तदसद्यतः प्रमाणा दृष्टान्तादपि च बाधितः पक्षः स यथा सहकार फले युगपद्वर्णादि विद्यमानत्वात्। तत् असत् यतः यानी वह झूठ है, क्योंकि यहाँ पर भी आम फल का उदाहरण दिया, उसको सहकार फल कहते हैं। सेकंड लाइन में लिखा ना सहकार फल, सहकार फल कहो आम्र फल कहो एक ही बात। तो द्रव्य में एक समय में एक ही गुण की सत्ता मानना ठीक नहीं है, क्योंकि ऊपर वो मान्यता में था ना, एक का नष्ट नाश होता है फिर दूसरा आता है, क्योंकि यह बात प्रमाण और दृष्टांत दोनों से बाधित है। आम के फल में एक साथ ही रूप रस गंध स्पर्श, रूप ने वर्ण को लिया यहाँ पर, आदि अनेक गुणों की सत्ता प्रत्यक्ष प्रतीत होती है, प्रत्यक्ष जानने में आती है। और यहाँ तो एक गुण का नाश होने पर दूसरे की उत्पत्ति मानता है। अथ चेदिति दोष भया नित्या परिणामिनस्ते पक्षः तत्किं स्यान्न गुणानां उत्पादादित्रयं सममन्यायात्। यदि उपयुक्त दोषों के भय से गुणों को नित्य और परिणामी माना जाए, तो फिर गुणों में एक साथ उत्पादादित्रय क्यों नहीं होंगे? अवश्य होंगे। यानी उस दोष को तो हमें स्वीकार नहीं करना है, तो फिर गुणों में एक साथ उत्पाद वे ध्रुवत्व मानना पड़ेगा। भावार्थ, द्रव्यों की तरह गुणों में भी उत्पाद आदि त्रय होते हैं, यह फलितार्थ निकल चुका, यानी बात सिद्ध हो गई, यही बात पहले कही जा चुकी है। अतः गुण नित्या नित्यात्मक है। देखो, ये स्वयं शंका उठाकर अन्य मतियों के मान्यताओं का खंडन करके ये जो बात पहले बता चुके हैं वो सही है, और फिर उस इसलिए ये सिद्ध होता है कहके उस निर्णय तक आप पहुंचते हैं। 130 नंबर अपि पूर्वं च यदुक्तं द्रव्यं किल केवलं प्रदेशास्यो तत्र प्रदेशवत्त्वं शक्ति विशेषश्च कोऽपि सोऽपि गुणः। पहले यह भी शंका की गई थी कि केवल प्रदेश ही द्रव्य कहलाते हैं, वो 124 में पूछा था उसने। सो प्रदेश भी प्रदेशत्व नामक शक्ति विशेष है, वह भी एक गुण है, यानी वो भी अन्य कोई चीज नहीं, वो भी एक गुण ही है, और उसी का वहां पर वो प्रदेश हो जाते हैं उसके। 131 तस्मात् गुण समुदायो द्रव्यं स्यात् पूर्व सूरिभिः प्रोक्तम् अयमर्थः खलु देशो विभज्यमाना गुणा एव। इसलिए जो पूर्वाचार्यों ने गुणों के समुदाय को द्रव्य कहा है वह ठीक है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि यदि देश यानी द्रव्य को भिन्न भिन्न विभाजित किया जाए तो गुण ही प्रतीत होंगे। भावार्थ क्या निकला? गुणों को छोड़कर द्रव्य कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। इन्हें वहां देश को वो भिन्न मान रहा था, प्रदेशों को, वो भी प्रदेशत्व नाम का गुण ही हो गया। अब यहाँ रुकेंगे हम। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तकनम सदा देतः।